أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے ویوہارک جیون پر آدھارت مسئلوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور ہمارا پریتن یہ ہے کہ ہم ان مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کریں جو ہمارے جیون میں آوشک ہیں اور ہم کو روز ان کی آوشکتا پڑتی رہتی ہے یا جن کے بارے میں بہت ادھک پرشن کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرام سے نماز کے بارے میں ادھیائے کو کھولا تھا اور ہماری بات چیت نماز کے بارے میں آرمبھ ہوئی تھی۔ ہم نے نماز سے سمبندھت احکام کے بارے میں جس سے بات شروع کی تھی وہ سب سے پہلا پروگرام اس چیز پر آدھارت تھا، اس بات پر آدھارت تھا کہ نماز کا سمے کیا ہوتا ہے۔ اسی بات چیت کو ہم اپنے اس پروگرام میں بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمارا پریتن یہ ہوگا کہ اس بات چیت کو اپنے اس پروگرام میں سماپت کرنے کے بعد نمازی کے کپڑے یا نمازی کے وسط کے بارے میں بات چیت کو بھی آرمبھ کر سکیں۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نماز کے فضیلت کے سمے کے بارے میں آپ سے بات چیت کی، اب ہم آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی نمازی کسی کارنوش اپنی نماز کو سمے سے پہلے پڑھ لے، جیسے ابھی مغرب کی نماز کا سمے نہیں ہوا تھا اس نے نماز شروع کر دیا، نماز پڑھ لی، یا ظہر کی نماز کا سمے نہیں ہوا تھا اس نے ظہر کی نماز کو آرام کر دیا یا نماز پوری پڑھ ڈالی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان جان بوجھ کر اپنی پوری نماز کو سمے سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی پرکار اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز کا کچھ بھاگ سمے سے پہلے پڑھ لے، نماز کا سمے آنے ہی والا تھا، نماز شروع کر دی اس نے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے۔ جیسے کہ مغرب کی نماز کا سمے ہونے والا تھا، ابھی سمے نہیں ہوا تھا، اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک رکعت سمے سے پہلے ہوئی، جب تک دوسری رکعت کا نماز کا جب تک دوسری رکعت آرام کرتا تب تک مغرب کا سمے شروع ہو چکا تھا، یعنی جان بوجھ کے اس نے مغرب کی نماز کو سمے سے پہلے آرام کر دیا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نماز کا سمے آ گیا ہے، جیسے کہ یہ وشیش کر اس سمے ہوتا ہے جب بادل بہت چھائے ہوتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، اب انسان کو کالا پن دیکھ کے، شام دیکھ کے اس بات کا یقین ہو گیا مغرب کی نماز کا سمے ہو گیا تھا، اور اب مان لیجیے انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اذان کی آوازیں نہ سنائی دیتی ہوں، اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ مغرب کا سمے ہو چکا ہے، اس نے نماز پڑھ لی، یا یقین تو نہیں ہوا تھا لیکن دو عادل آدمی آتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مغرب کی نماز کا سمے ہو گیا ہے، اب ان کے کہنے پر یا اپنی یقین کے آدھار پر اس نے نماز کو شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ابھی سمے ہوا نہیں تھا لیکن اس کو وشواس ہوا کہ سمے ہو گیا، نماز پڑھ لی یا نماز آرام کر دی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے وشواس کے آدھار پر یا دوسروں کے کہنے کے آدھار پر اس نے نماز کو آرام کر دیا، ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہا تھا، جیسے مغرب کی نماز ابھی وہ پڑھ ہی رہا تھا کہ نماز کے بیچ میں بھی اس کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ نہ ابھی نماز کا سمے نہیں ہوا ہے، تو اگر نماز کے بیچ میں، نماز پڑھتے ہی پڑھتے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ابھی نماز کا سمے نہیں ہوا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کے لیے آوشک یہ ہوگا کہ سمے کو آ جانے کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھے۔ लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसको नमाज़ पढ़ चुका है, अब नमाज़ पढ़ने के बाद उसको पता चला कि समय हो चुका था, यानी समय से उसने पहले नमाज़ पढ़ ली। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर नमाज़ का समय हो चुका था उसके बाद, यानी नमाज़ पढ़ चुका था उसको बाद उसको पता चला कि समय अभी नहीं हुआ था, तो उसकी नमाज़ सही है, मगर ये कि उसने अपने विश्वास या दो आदिल आदमी की गवाही के आधार पर उसने नमाज़ को पढ़ा हो। लेकिन एक बात और यहाँ पर यह निकलती है, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपना विश्वास हुआ, इंसान ने नमाज आरंभ भी कर दी, लेकिन नमाज आरंभ करते करते नमाज जब तक समाप्त होती होती नमाज का समय आ चुका था। अगर ऐसी सूरत होती है तब तो नमाज सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ चुका है इंसान, अब उसको जब उसने घड़ी में टाइम देखा या किसी और माध्यम से उसको पता चला, उसको इस बात का विश्वास हो गया कि उसकी पूरी की पूरी नमाज समय से पहले हो गई थी, यानी अभी मग़रिब का समय नहीं आया था या इशा का समय अभी नहीं आया था, उसने मग़रिब या इशा की पूरी नमाज़ समय के आने से पहले ही पढ़ डाली है। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी नमाज़ समय से पहले पढ़ लेता है और नमाज़ पढ़ने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसकी नमाज़ समय से पहले हो गई थी, तो उसकी नमाज़ बातिल है और उसको चाहिए कि नमाज का समय आरंभ होने के बाद दोबारा अपनी नमाज को शुरू करे। इसके बाद कभी कभी ये होता है कि नमाज का पढ़ना आरंभ कर दिया उसने, कुछ नमाज पढ़ ली, यानी अगर 2 मिनट बचे हुए थे, 1 मिनट शुरू के 1 मिनट में उसने नमाज पढ़ डाली, उसको जो है यानी 1 मिनट जो समय से पहले था उसमें नमाज शुरू की और आखिर के यानी 2 मिनट नमाज उस समय समाप्त की जब 2 मिनट समय में दाखिल हो चुके थे, यानी कुछ नमाज समय से पहले ख़त्म हुई और कुछ नमाज समय से बाद में, यानी शुरू नमाज समय से पहले हुई थी, ख़त्म नमाज समय के बाद हुई, तो ऐसी समय पे क्या होगा, उसकी नमाज का हुक्म क्या है। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान समय से पहले नमाज को आरम्भ करे और समय के अंदर दाखिल होने के बाद नमाज को पूरा करे तो उसकी नमाज सही है और उसकी नमाज के बारे में कोई इश्काल वारिद नहीं है। उसके बाद यहीं पर नमाजी के बारे में कुछ प्रश्न किए जाते हैं हमसे, यहीं पर आपके सामने बयान कर दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वो मोमिन जो बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, जो अपनी नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं और नमाज को समय पर पढ़ते हैं, वो हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हम अपने परिवार में बहुत नमाजी हैं और सुबह की नमाज़ हम हमेशा पढ़ते हैं और हमारे परिवार के कुछ लोग सोते रहते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में हमारे ऊपर ये वाजिब है कि हम उन लोगों को जगाएं जो सोते रह गए हैं, क्या उनको जगाना हमारे ऊपर वाजिब है? तो यहाँ पर फुकहा ये जवाब देते हैं कि अगर ना ना जगाना नमाज के हल्का समझने का कारण बनता हो तो इंसान के लिए वाजिब है कि वो उनको जगाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उनको जगाना वाजिब नहीं है। तो ये वो चीज़ें थीं जो एक नमाज गुजार को ध्यान रखना है कि इंसान जब नमाज पढ़ रहा है तो उसका समय आ चुका हो, ऐसा ना हो कि समय से पहले नमाज को आरंभ कर दे या ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी नमाज समय से पहले पढ़ डाले। उसके बाद जो एक नमाजी को ध्यान रखने वाली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है जब नमाज पढ़ रहा है इंसान, तो समय का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी इंसान नमाज उस समय पढ़े जब नमाज का समय आरंभ हो चुका हो। और दूसरी चीज़ जो इस मामले में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है, जब ईश्वर की आराधना के लिए खड़ा हो रहा है, तो उसका कपड़ा कैसा हो, उसने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, लिबास जो पहन रखा है वो किस प्रकार का हो। हम यहाँ पर अपने इस बातचीत को इस प्रोग्राम में भी आगे बढ़ाएंगे, यानी एक नमाजी का लिबास किस प्रकार हो, तो यहाँ पर हम आपको ये बयान कर रहे हैं। तो जिस मात्रा में इंसान को नमाज पढ़ते समय अपने शरीर को छिपाना है, वो मर्द और औरत, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है। पुरुषों के बारे में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि एक पुरुष के लिए नमाज पढ़ते समय वाजिब ये है कि वो अपने गुप्तांगों को छुपाए, यानी अपने गुप्तांगों को छुपाना ही काफ़ी है, यानी अगर वो छुपा लेता है तो उसकी नमाज सही, यानी जैसे मसलन कि अगर इंसान अंडरवियर पहन के नमाज पढ़ लेता है, एक पुरुष अंडरवियर पहन के नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज सही होगी, लेकिन हमारे फुकहा ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि कम से कम नाभि से लेके अपने घुटने तक का भाग इंसान, एक मर्द एक पुरुष छिपाए। ये तो वो चीज़ हुई जो हमारे फुकहा ने नमाज के सही होने के बारे में बयान की। अगर इससे कम एक पुरुष वस्त्र धारण करता है तो उसकी नमाज सही नहीं होगी, लेकिन बेहतर यह है कि इंसान जब नमाज पढ़ने खड़ा हो रहा है तो ऐसा वस्त्र धारण करे जो बेहतरीन हो। जैसे कि हमारी रिवायात में भी ये बात आई है कि इंसान जब नमाज पढ़ने खड़ा तो अपना सबसे बेहतरीन कपड़ा, अपना सबसे बेहतरीन लिबास पहने, खुशबू लगाए, इस प्रकार की चीज़ें रखें। यानी जब नमाज पढ़ने जाए तो इस प्रकार जाए कि उसको एहसास हो इस बात का कि वो ईश्वर की बारगाह में जा रहा है। तो ये वो चीज़ हुई जो मर्द के लिए है कि मर्द कम से कम अपनी गुप्तांगों को, अपनी शर्मगाहों को बहरहाल छिपाए। अगर इसको नहीं छिपाता है तो नमाज़ उसकी बातिल होगी। उसके बाद नंबर आता है महिलाओं का कि महिलाएं नमाज़ पढ़ते समय क्या करें। तो हमारे फुकहा कहते हैं कि महिलाओं के लिए आवश्यक ये है कि जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हैं तो अपने पूरे शरीर को, सर से लेके पैर तक, अपने पूरे शरीर को छिपाएं। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे फुकहा कहते हैं कि छिपाना वाजिब नहीं है। जैसे कि क्या? जैसे कि हाथों को गट्टों तक, यानी ये हाथ यहाँ से यहाँ तक एक महिला अपने नमाज पढ़ते समय खोल सकती है। इसी प्रकार पैरों को गट्टे तक अपने खोल सकती है, और चेहरे का वो भाग जो वुज़ू में धोया जाता है, यानी चेहरे का वो भाग जो वुज़ू में धोया जा रहा है वो भी एक महिला खोल सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि जितना संभव हो एक महिला को चाहिए कि अपने शरीर को छिपा कर रखे। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब इंसान नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका कपड़ा किस प्रकार का, यानी कपड़े के बारे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस कपड़े में नमाज पढ़ रहा है वो कपड़ा उसका पवित्र हो, पाक हो। यानी अगर नजिस कपड़े में नमाज पढ़ रहा है तो नमाज सही नहीं होगी, बातिल होगी। और दूसरी चीज़ और जिसका ध्यान रखना आवश्यक है वो ये है कि जिस कपड़े में नमाज पढ़ रहा है वो मुबाह हो। ये मुबाह एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हर मसले में, हर वो चीज़ जिसमें जो अहकाम पर आधारित है उसके बारे में बात कही गई। जैसे कि हमने वुज़ू के भाग में ही बताया था कि जब इंसान वुज़ू करना चाहता है तो पानी ऐसा हो कि जो मुबाह हो। जैसे कि बहुत सी शर्तें हैं पानी के बारे में, उसमें यह भी है कि मुबाह हो। इसी प्रकार कपड़े के बारे में, नमाजी जिस कपड़े में नमाज़ पढ़ा उसके लिए भी ये आवश्यक है कि कपड़ा एक तरफ तो ये कि पवित्र हो, दूसरे ये कि मुबाह हो। मुबाह का क्या मतलब है? यानी वो चोरी किया हुआ ना हो, छीना हुआ ना हो, झपटा हुआ ना हो, किसी ऐसे का लिबास ना उठाया हुआ जो उस पर राज़ी ना हो। मसलन हम अपने रूममेट के साथ रह रहे हैं, हमको पता है कि वो हमारा रूममेट इस बात पर राज़ी नहीं है कि हम उसका स्वेटर मसलन पहन लें, लेकिन हमने स्वेटर पहन के नमाज़ पढ़ ली। तो अगर इंसान का लिबास मुबाह नहीं है, गस्बी है, छीना झपटा, चोरी किया या इस प्रकार किसी किसी तरीके से लिया हुआ है, तो अगर ऐसे कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जा रही है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। तीसरी चीज़, उसके बाद जो नमाज के कपड़े में, नमाजी के कपड़े में ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि नमाजी जिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा है वो किसी ऐसे जानवर के शरीर के उस अंग से ना बना हो। ध्यान देने वाली बात है, ऐसे जानवर के शरीर के उस अंग से ना बना हो, उस हिस्से से ना बना हो जिसके अंदर रूह पाई जाती हो, जिसके अंदर आत्मा पाई जाती हो, और उस जानवर को गैर शरई तरीके से ज़िबा किया गया हो, यानी उसको ज़िबा ना किया गया हो। शरीयत ने जो कानून, जो नियम बताए हैं ज़िबा करने के, उस आधार पर उसको ना काटा गया हो। अगर इंसान किसी ऐसे कपड़े को पहनता है जो एक ऐसे जानवर के उस हिस्से से बने हैं जिसमें रूह पाई जाती है, जिसमें आत्मा पाई जाती है, और उसको शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया है, तो अगर नमाजी ने ऐसा वस्त्र धारण कर रखा है तो उसकी नमाज़ बातिल है। जैसे कि अगर इंसान किसी जानवर को जिसको शरीर तौर से ज़िबा नहीं किया गया, सिर्फ उसको काट दिया, या जिसको हम कहते हैं झटके का, झटके में मार दिया गया हो, तो अगर उसकी खाल से बना हुआ कोई जैकेट हो, कोई कपड़ा हो, इस प्रकार की चीज़ अगर उसने पहन रखी है तो उसको चाहिए कि नमाज से पहले उसको हटा दे। अगर नहीं हटाता है और इसी प्रकार पढ़ लेता है तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। इस बारे में कुछ और भी मसले हैं जिनको हम अपने किसी अगले प्रोग्राम में आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।